ओम शांति। कभी हमारे बीच उपस्थित हैं सरला बेन। तो सरला बेन अधिकतर तो आप जानते हैं कि मधुबन में जितने भी प्रोग्राम होते हैं उस समय उपस्थित रहती हैं। ये विशेषता है सरला बेन की कि जब मधुबन से सिर्फ फोन जाता है तो उनका नेचर, हाँ जी, जो मैंने अनुभव किया है कि वो हमेशा कोई भी, चाहे मैंने भी कल फोन किया तो कहा हाँ जी, अचानक से फोन करना पड़ा आज के क्लास के लिए तो कहा हाँ जी। तो उससे हम सभी समझ सकते हैं कि जब हम सरिक बहनों को वो तुरंत हाँ जी करते हैं तो बड़ों को किस प्रकार से उन्होंने हाँ जी किया और वो अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ी है। दूसरी इनकी विशेषता है, जैसा इनका नाम है सरला तो सरल, उनका स्वभाव वो बहुत सरल है। तीसरी बात इनकी यह भी है कि मैंने अनुभव जो की है, सरला बहन सोचेंगी कि शायद नहीं, मैं वो नहीं कह रही, लेकिन मेरे अनुभव में जो आई है, क्योंकि बचपन से कई बार हम भी मधुबन आते हैं, ये भी आते हैं, तो हमारी नजर रहती है किस पर क्या कौन सी विशेषताएं हैं जो हमारे जीवन के अंदर प्रगति कराती हैं। तो इनकी अभी एक विशेषता है कि मिलनसार, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या हम सरिक हो, हर एक के साथ मिल करके चलना, ये इनका विशेष हमने देखा कि गुण है कि किसी को भी ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ दें या किसी को पकड़ लें, इस प्रकार से नहीं है, मिलनसार नेचर भी है। तो हाँ जी की बात जब मैं कह रही थी तो मुझे अंदर संकल्प आया कि मम्मा भी नंबर वन मम्मा बन गई। कैसे बनी? तो बाबा की श्रीमत, बाबा की आज्ञाएं, बाबा की शिक्षाएं, और बाबा का सब कहना और मम्मा का हाँ जी कहना है? बस हाँ जी। तो जीवन की प्रगति का आधार वो है हाँ जी है? जो विशेष सरला बेन में भी नजर आता है। सरला बेन बचपन से, लगभग 55-60 वर्ष से इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया। बहुत छोटी सी आयु में मुरादाबाद में आपने इस ज्ञान को प्राप्त किया और साथ साथ 41 वर्षों से आप अपनी सेवाएं मेहसाणा सेंटर पर दे रही हैं। 44 ईयर्स से आपने अपने जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किए हैं। वर्तमान समय आप ग्रामीण विकास प्रभाग, आप जानते हैं रूरल विंग जिसे कहते हैं, आप उनकी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। यौगिक खेती आपने सुना होगा, आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया हुआ है कि योग के द्वारा खेती किस प्रकार से फलीभूत होती है, वो उनका बहुत अच्छा अनुभव है। ऐसे ही आज हमें योग के विषय को ही लेकर के, योग का मूल जो बात आती है वो आती है वृत्ति। योगिक खेती में भी देखें तो हमारी वृत्तियों का ही प्रभाव पड़ता है। तो वृत्ति के द्वारा वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है, वृत्ति के द्वारा वायुमंडल को हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, इस विषय पर प्रकाश डालेंगी सरला बेन। आपने भी कई स्थानों पर कॉन्फ्रेंसों में, सम्मेलनों में भाग लिया है, साथ साथ देश विदेश में आपने जाकर के बत्तियां भी कराई हैं। तो योगिक खेती के बारे में भी जाकर के जानकारियां दी हैं, तो हमें भी बताएंगे वृत्ति द्वारा वायुमंडल कैसे परिवर्तन हो सकता है। आदरणीय सरला बेन।
ओम शांति। सचमुच में हम सभी आत्माएं पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। हमारे जैसा भाग्य दुनिया में किसी का नहीं है। है किसी का भाग्य? नहीं है। हम सिर्फ कहते नहीं हैं, लेकिन उस भाग्य की हम सबको महसूसता है। और भाग्य विधाता ने भाग्य बनाने के बहुत सारे रास्ते हम सबके सामने खुले कर दिए हैं। मैं विषय को स्पष्ट करने से पहले, अभी जब कुंती बहन कह रही थी हाजी का पाठ, तो मुझे अपने जीवन की एक घटना याद आई। मेरा बचपन इस मधुबन के आंगन में पला है। मैंने जो कुछ भी सीखा है वो इस मधुबन से सीखा है। मैंने अपने जीवन के अंदर कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, लेकिन दादियों की दुआओं ने मुझे आत्मा को खूब आगे बढ़ाया है। तो 71 में जब मैं मधुबन रहती थी, अभी छोटी थी, लगभग 17 वर्ष की आयु थी, घर से आई थी, दादी जानकी एक दिन क्लास करा रही थी, तो दादी ने ये कहा, कभी भी किसी काम के लिए ना नहीं कहना चाहिए। हम सब छोटी छोटी कुमारियां बैठी थी, सदैव हाँ जी बोलो। बहुत अच्छी बात, ध्यान से आप अगर उस बात को नोट करेंगे, समझने की ये थी कि दादी ने कहा, अगर कोई भी आपको कोई सेवा देता है, वो बाबा ने उसको निमित्त बना करके उसके द्वारा आपको सेवा दी। बाबा डायरेक्ट तो नहीं आएगा ना, दीदी के द्वारा, दादी के द्वारा, किसी के द्वारा कहलाता है। तो बाबा जो आपको सेवा दे रहा है, माना आपको ताज पहना रहा है, बाबा ताज लेकर के आया, और अगर आपने बोला नहीं मैं नहीं कर सकती हूं, ये एक्शन था दादी का, तो फिर अगर मैंने ऐसे किया तो मेरी जगह बाबा ताज उसको पहनाए, क्योंकि उसको सेवा करानी है, किसी को भी पहनाएगा। उसने उसको ताज पहना दिया, लेकिन फिर बात ये कही, आपने जो ना बोला, फिर वो विशेषता उसी रूप से कभी भी आपके जीवन में नहीं आएगी। क्यों? कर्म का सिद्धांत। आपने डायरेक्ट ईश्वर का डिसरिगार्ड किया। मुझे कौन कह रहा था? बाबा कह रहा था। मैंने अपने निश्चय की कमी के कारण इन बाह्य चक्षुओं से किसको देखा, ये बहन जी ने बोला है, मेरे से नहीं होता है, मुझे नहीं आता है। लेकिन ये बहन जी नहीं कह रही थी, सेवा किसकी है? बाबा की है। मैंने किसको ना किया? बाबा को ना किया। तो ऑलमाइटी का जो डिसरिगार्ड किया, फिर वो विशेषता उसी रीति से कभी भी आपके जीवन में नहीं आएगी। तब से हमेशा कभी भी मैंने किसी भी सेवा के लिए ना नहीं कहा है। दादी को एक प्रश्न किया, मैंने कहा दादी हाँ जी तो करना है, छोटी थी ना, अभी कोई मुझे बोलता है तुम खाना बनाओ, और मुझे खाना बनाना नहीं आता था, तो मुझे क्या कहना पड़ेगा? दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, ना नहीं कहना, तुम उसको ये कहना कि आप जैसे कहोगी वैसे मैं ये बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता है। पहला सेंटेंस क्या था? आप जैसे कहोगी ऐसे मैं करूंगी, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, अथवा मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया है। उसको अगर लगेगा कि मैं इसको सिखाऊं, तो वो आपको सिखाएगी, नहीं तो वो कहेगी इसकी जगह ये करे, आप कभी ऐसे नहीं करो। ये है हाजी का पाठ, और उस हाजी के पाठ ने अब तक के जीवन में कितनी घटनाएं हैं जिनके अंदर में शायद ये आत्मा बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी कि मैं ये कर सकती हूं, लेकिन सिर्फ हाजी कहा, और हाजी कहने के बाद बाबा को बोलती थी, बाबा मैंने हाँ बोला है, अभी आपको संभालना है। तो वो विशेषता और शक्ति भरना वो बाबा का काम है, और बाबा, दादी कहती थी, बाबा जानता है कि आपके अंदर वो शक्ति है लेकिन छुपी हुई है, बाबा उसको विकसित करना चाहता है। तो अपने जीवन के अंदर सफलता या सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, हमारे सामने अभी कुंती बहन ने जैसे मम्मा के लिए कहा, हमारे माता पिता को देखें, आदर्श मूर्त अपनी दादियों को देखें, हमेशा उनसे यही सीखने को मिला, क्या कहेंगे? हाँ जी। ये हाँ जी आगे ले जाएगा। ऐसे दादियों की दुआएं लेते लेते आज यज्ञ बाप दादा खूब सेवाएं ले रहा है। जब हम वृत्ति की बात करते हैं तो सोच रही थी कि सचमुच में बाबा ने हम सबको पसंद करके सबसे पहले बाप रूप का प्यार दिया। उस प्यार की पालना ने जो अब तक मोह और ममत्व में ये वृत्ति बंधी हुई थी, ये मेरी मम्मी, ये मेरा पापा, ये मेरा भाई, ऐसा एक अलौकिक प्यार दिया जिस प्यार ने उस लौकिक वृत्ति से मुक्त कर दिया। बाबा के प्यार का अनुभव तो करते हैं ना, भले साकार में नहीं देखा लेकिन अव्यक्त में भी आज बाबा इतना प्यार, इतनी पालना दे रहा है, तो जिस प्यार और पालना ने माता पिता के रूप में हमें इन बंधनों से मुक्त किया, शिक्षक के रूप में बाबा ने इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाई और उस पढ़ाई को पढ़ा करके हम सबको लायक बनाया। लायक बना रहे ना, हमारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। ऐसी लायकत, ऐसी विशेषताएं बाबा हम सब के अंदर शिक्षक के रूप से पढ़ा करके भर रहा है और उन शिक्षाओं को जीवन में उतारने के लिए बाबा ने सतगुरु रूप से हमें वरदान दिया, बल दिया और श्रीमत दिया। जिस श्रीमत के बल पर जो पढ़ाई हमने पढ़ी है उसको हम सहज रीति से अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। पहला पाठ बाबा ने हम सबको पढ़ाया, मैं एक आत्मा हूं। ठीक है, हम सब ने उस पाठ को पढ़ा, जिन्होंने ये पाठ पढ़ा है वो हाथ खड़ा करें। अच्छा ठीक है, जिन्होंने इस पाठ को समझा है मैं आत्मा हूं वो हाथ खड़ा करेंगे। समझने और पढ़ने में कोई अंतर है? है, क्या अंतर है जी? समझना अभ्यास है और पढ़ना मींस किसको सिखाना, और समझना मींस महसूस करना। हमने इस आत्मा के पाठ को सचमुच महसूस किया है? पूछो, एक मिनट गहराई में जाकर के, क्योंकि फर्स्ट डे से और आज दिन तक एक मुरली के अंदर कितना बारी बाबा कहता है हम सब आत्मा भाई भाई हैं, आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो, क्योंकि वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने का आधार ये आत्मिक वृत्ति है। कई बार आप इस बात को महसूस करते होंगे, मैं अपने आप के सामने बाबा और दादियों को रखती हूं, हमने जो आत्मा के पाठ को समझा है या पढ़ा है और बाबा ने जो अपने आप को पढ़ाया, बुद्धि तक समझ है, पढ़ाया मीन्स उसके पीछे मेहनत, मैं पढ़ रहा हूं, मैं अभ्यास कर रहा हूं। बाबा ने फर्स्ट डे से आत्मा हूं लिख लिख करके अभ्यास किया। बाबा ने इन दादियों को, जब किसी को तुम देखो तो पहले एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए भी दृष्टि दो, मैं आत्मा भाई, इस आत्मा भाई को देख रहा हूं, ये अभ्यास कराया। और इस अभ्यास को बाबा इतना गहरा ले गया रात को जाग करके चिंतन करके भी बाबा खोया हुआ है, बस आत्म चिंतन में। और उस आत्मिक चिंतन में ना बाबा को कोई चिंता थी, ना कोई गम था, ना कोई अज्ञान था, अंधेरा था। इतना गहरा बाबा चिंतन में जाता था, बस आत्मिक चिंतन में खोया हुआ है। हम जो आत्मा का पुरुषार्थ करते हैं, हम शब्दों का प्रयोग, संकल्पों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, लेकिन संकल्पों तक को स्वरूप तक ले जाएं, उसमें हमारी बहुत परसेंटेज है, मेजोरिटी पुरुषार्थी। एक जगह बच्ची में गई थी तो बहुत सुंदर अनुभव सब सुना रहे थे कि हम स्वमान का अभ्यास करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने डायरियां बनाई हुई थी, डेली 50 बार, कोई 101 बार, हर रोज एक एक स्वमान लिखते थे, जैसे मैं विजयी रतन हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, सारी डायरियां हर रोज की भरी हुई थी। ये हमारा पुरुषार्थ बचपन का पुरुषार्थ है। जैसे छोटे बच्चे को पेन और स्लेट दे देते हैं ना, पेंसिल लिखो, क क मैंने घोटते रहो, वो बार बार आ लिखता रहेगा, का लिखता रहेगा, क्योंकि उसको घोटना है, अभी सीखना है। अब हम कहां पहुंचे हैं? भले बाबा के घर में 6 मास का बच्चा है, लेकिन 6 मास के बच्चे का भी वही पुरुषार्थ है जो हमारे 70 वर्ष के दादियों ने किया है, 78 वर्ष की हमारी दादियों ने किया है, क्योंकि हम सबका एक ही एग्जाम है। दादियों का एग्जाम अलग होगा, हमारा अलग होगा? नहीं। दादियों का लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य अलग है? नहीं, एक ही है ना। जब एक ही लक्ष्य है तो जिस कार्य को उन्होंने 78 ईयर में किया है, वो कार्य आप सबको कितना टाइम में करना पड़ेगा? इस थोड़े से पीरियड में, जितने भी वर्ष से आप चलते हैं। हम बाबा को ये नहीं कह सकते हैं कि मैं अभी बाबा 1 वर्ष 2 वर्ष या 10 वर्ष का बच्चा हूं, भले हूं, लेकिन हमारे पुरुषार्थ की जो स्पीड है, स्पीड वही जाएगी जो दादियों की है। एक बार दादी जानकी ने कहा कि एक विदेशी ने दादी को कहा, दादी भले बाबा कहता है कि 108 रत्नों में सब अभी आ सकते हो, मार्जिन है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि 108 में हम आ सकते हैं, क्योंकि आप सबने जो पुरुषार्थ किया है, मेहनत की है, अभ्यास किया इतने लंबे टाइम का, और हम लोग इस थोड़े से समय के अंदर में अपना इतना ऊंचा पुरुषार्थ बनाए, वो हो नहीं सकता है। आप क्या समझते हैं? दादियों ने जो 78 इयर्स के अंदर किया, वो पुरुषार्थ हम कर सकते हैं? सोच रहे हैं। दादी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, कर सकते हैं। क्यों कर सकते, उसका जवाब था, कहा कि जब हम लोग आए, और दादी ने उसको कहा कि हमारे समय पर अगर तुम आया होता तो भाग जाता था, इतना लंबा पुरुषार्थ नहीं कर सकता था। हमने जो मेहनत की, बाबा ने जो कराया, आज सब कुछ करने के बाद में सुंदर डाइनिंग टेबल सजा हुआ है, वैरायटी बनी हुई है, आपको सिर्फ क्या करना है, कुर्सी पर बैठ करके खाना है, इसलिए आप आगे जा सकते हो। हमने आप सब के लिए ये सुंदर भोजन तैयार किया है। आज कितनी वैरायटी सेवाएं, आज हमारे पास कितने सारे योग के, सेवा के साधन है। तब इन सब को बाबा कह देता था, बच्चे जाओ झाड़ के नीचे बैठ करके लिखो, चिंतन करो। आज आपको चिंतन लिखने की जरूरत पड़ती है? योग में चिंतन करने की जरूरत पड़ती है? यहां से कमेंट्री बज रही है और हम बैठे हुए, सब रेडी है? यहां से आप बच्ची पूरा करके जाएंगे, जाने से पहले आप कैसे डिपार्टमेंट के पास में जाएंगे, हमारी बच्ची की क्लासेस की सीडी दे दो, सीडी लेकर के जाएंगे, सब रेडी है। लेकिन जरूरत क्या है? इस रेडी माल को पचाने की ताकत चाहिए, सिर्फ इतना आपको करना है। और उसको पचाने के लिए खुद की पाचन शक्ति मजबूत चाहिए, समझ रहे हैं? जब आपकी पाचन शक्ति अच्छी होगी तब आप जो बट्टी कर रहे हैं या बाबा जो हमें सुना रहे हैं उसको यथार्थ रीति से डाइजेस्ट कर सकेंगे। अभी कई बार क्या होता है, हमें वैरायटी भोजन की नॉलेज है, वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनता है अगर आपको बोला जाए तो आप क्लास करा सकते हो, नॉलेज है। लेकिन जो मैं बात कह रही थी बाबा की, बाबा ने जिस रीति से उसका अभ्यास किया, जिस अभ्यास से बाबा की आंतरिक वृत्ति में परिवर्तन आया, बाबा ये भूल गया ये मेरा बेटा है, बाबा ये भूल गया ये मेरी पत्नी है, बाबा की क्या वृत्ति बनी, यशोदा एक आत्मा है, नारायण एक आत्मा है, लेकिन अभ्यास से बना। सुनने से नहीं, समझने से नहीं, उसका मतलब आप ये नहीं समझना कि ये दोनों आवश्यक नहीं है, लेकिन केवल इतना नहीं सुनना और समझना, सुनने और समझने के बाद प्रैक्टिकल अभ्यास चाहिए। हमारा जो ये देह का अभ्यास हुआ है, देह भान इतना पक्का, उसका कारण क्या है, कर्म में बार बार जब से आंख खुलती है और आंख बंद होती है तब तक बार बार हम क्या कहते हैं, मैं फलाना हूं, मैं ये जानता हूं, मैं ये करता हूं, कर्म में करते हैं ना, तो ये देह भान दैहिक वृत्ति पक्की हो गई। अब हमें क्या करना है, कर्म करते हुए, योग में बैठे तब तो हम बरोबर समझ रहे हैं मैं आत्मा हूं, लेकिन कर्म करते हुए पहले इस आत्मिक वृत्ति का अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूं, ये अभ्यास अब हम सबका बहुत पक्का चाहिए। कितना पक्का, जैसे बाबा ब्रह्मा का था, आज हमारे सामने हमारी दादियां हैं। अभी भी दादी को थोड़ा दिन पहले बहने मिली थी तो दादी ने कहा इतनी हमारे अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, इतना आत्मिक बल होना चाहिए जो हम सामने वाले की नेगेटिविटी को खत्म करते, यह आत्मिक बल है, ये हमारे कर्म में चाहिए। इसके लिए हमें बहुत सिंसियरली पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मैं जानती हूं, मुझे सब मालूम है, ये सब मालूम ये अभ्यास नहीं है, ये तो दुनिया वाले भी कह, हम सब जानते हैं, लेकिन वो जो जानते हैं उस पर चलते नहीं है। हम जानना उसको कहते हैं जिसको मानते भी हैं, जिस पर चलते भी हैं। तो वृत्ति परिवर्तन फर्स्ट स्टेज में आत्मा भाई भाई की दृष्टि का बाबा ने पाठ पक्का कराया, और ये पाठ पक्का कराते कराते व्यवहार में शुद्धि बाबा लाया, लौकिक बंधनों से, संबंधों से मुक्त किया। बाबा ने क्या टाइटल दिया, आप परिवार में रहते हो, परिवार में रहते भी आप गृहस्थी नहीं हो, लेकिन आप कौन हो, ट्रस्टी हो। जो ट्रस्टी हैं वो हाथ खड़ा करेंगे, समझते हैं ट्रस्टी किसको कहते हैं, सब बाबा का है, ये समझा है ना, बाबा का है। बाबा अगर ऑर्डर करे सब छोड़ करके बच्चे यहां आ जाओ, वो रेडी कौन है, सोच करके हाथ खड़ा करना, क्योंकि अभी तक हम सच्चे ट्रस्टी नहीं बन पाए हैं, बन रहे हैं। मैं क्यों ऐसा कह रही हूं, हमारे पास भी परिवार है तो आपके, हम सब एक ही परिवार के हैं। अभ्यास और मेहनत के बाद भी जो सूक्ष्म भावनाएं परिवार के बंधन में बंधी हुई हैं, वो अभी नहीं कटती हैं। क्लास में आते हैं तब तक तो हम बरोबर समझते हैं कि हम आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, लेकिन सूक्ष्म का जो बंधन है, पति पत्नी का जो सबसे नजदीक का संबंध है, बच्चे का जो सबसे नजदीक का अधिकार का संबंध है, वो संबंधों के बंधन से ये आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई है। समझते हैं इस बात को? फट से निकलता है ये मेरी पत्नी है, पत्नी तो पत्नी रहेगी ना, लेकिन जो मेरेपन का भाव है, ये सूक्ष्म बंधन है। क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनाना बहुत ऊंची स्थिति, ट्रस्टी वो है। मुझे आज दादी कहे सरला तुम ऐसा ना छोड़ करके आ जाओ मधुबन, जी दादी रेडी हूं। मुझे भेजा किसने? दादी ने भेजा। जब भेजा तब कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ, बहुत सेवाएं, बहुत वृद्धि हुई। कराई किसने? बाबा ने कराई। तो जब बाबा मेरे से वहां करा सकता है, तो आज जहां भेजेगा वहां भी कराएगा। तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि अभी इस आत्मा के बंधन कौन कौन से हैं, संबंधों का बंधन। सचमुच में आप पत्नी को, ये बाबा की बच्ची है, बच्ची समझते हैं? बाबा ब्रह्मा ने, हमारी यशोदा मैया ने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया, इस संबंध के बंधन से मुक्त हुआ। बाबा क्या कहता था यशोदा माता को? बच्ची। और यशोदा माता बाबा को क्या कहती थी? बाबा। पति को पिता समझना, पति था ना बाबा, यशोदा माता ने क्या समझा? ये पिता है। और वृत्ति में भी नहीं था कि ये मेरा पति है, ये आकर्षण खत्म हो गया, तब आत्मा उड़ सकी। मेरा बेटा, हिस्ट्री सुनते हैं कि जिस समय नारायण कुमार ने कहा मुझे जाना है, तो बाबा ने उसको छुट्टी दी, बच्चे तुम जा सकते हो। बाबा को ये विचार भी नहीं आया कि मैं इसको किराए के लिए पैसा दूं, तो किसी बहन ने कहा कि बाबा ये जा रहा है तो उसको किराए के लिए पैसा तो चाहिए। बाबा ने कहा अच्छा बच्ची उसको ये दे। आप अपने को चेक करो, हर एक पुरुषार्थी नंबरवार है, पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन चेक करो, मेरा बच्चे में ममत्व है? बच्चे को पढ़ाना लिखाना, अच्छी रीति से संभाल करना आपकी फर्ज है। आप फर्ज समझ करके बच्चे को पढ़ा रहे हो, या मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, मेरा बच्चा ऐसा बने? अगर ये मेरेपन का ममत्व है तो मैं ट्रस्टी नहीं हूं। एक बार ऐसे ही बैठे थे तो रमेश भाई ने हंसते हुए बड़ी अच्छी बात सुनाई, चिट चैट करते सब ऐसे बैठे थे दादी के टेबल पर। तो आम की सीजन है ना, तो आम दिया उनको काट करके खाने के लिए, तो उनकी प्लेट में दो चीरी थी, दो फाड़ी होती है ना आम की, ऐसे काट करके दो पीस वो उनको दिया हुआ था। तो कहता है दादी मैं एक दिन घर में आम खा रहा था, तो सारा आम खाया, फिर दूसरा लिया, तो थोड़ा आसक्ति से खाया। फिर उस समय मैंने अपने आप को पूछा, यज्ञ में तो तुमको एक मिलता है, यज्ञ में तो दो फाड़ी मिलती है, तुम सचमुच में ट्रस्टी हो? घर में वृत्ति को चेक किया कि यहां पर भी जैसे ट्रस्टी हम मधुबन में आ रहे हैं, मधुबन यज्ञ हमें पालना दे रहा है, मैं उसी रीति से अपने आप को चलाता हूं। कहां ये मेरा लाया हुआ है, वो मेरापन तो नहीं आता। आम किसने लाया? मैंने लाया। यहां हम क्या कहते हैं? मधुबन से मिला, भोजन पर एक कटोरी रस मिला। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इतनी गुह्यता है इस ज्ञान की। तो जब आत्मा इन सूक्ष्म बंधनों से, संबंध के बंधन से, संपत्ति के बंधन से मुक्त हो, तब वृत्ति श्रेष्ठ बन सकती है। बाबा ने पहले दिन से, जैसे बाबा को बाबा में निश्चय हुआ, हीरे बाबा को क्या दिखाई देते थे? पत्थर। क्यों बाबा को पत्थर दिखाई दिए? क्यों पत्थर दिखाई दिए? क्योंकि बाबा को ज्ञान जो था वो रत्न दिखाई देता था। उन रत्नों की बाबा को वैल्यू दिखाई देती थी। जैसे नहीं, छोटा बच्चा कोई चीज लेकर के आए, बड़ा खुश हो जाता है, उसको वही चीज अच्छी दिखाई देती है। माँ बाप समझते हैं बेटा छोटे में खुश हो रहा है, बेटा है ना, छोटा है ना, लेकिन वैल्यूबल क्या है उसकी वैल्यू उस चीज की माँ बाप को मालूम है, ये छोटी चीज है, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। तो बाबा को पहले दिन से ज्ञान जो था वो रत्न दिखाई दिया, इसलिए बाबा को उस स्थूल संपत्ति के साथ में जो लगाव था वो बाबा का लगाव खत्म हो गया। झोपड़ी छोड़ करके कोई आपको महल में भेजे, आपको मुश्किल लगेगा जाना? लगेगा? अरे इतना अच्छा महल है। तो बाबा ने भी उस बात को महसूस किया, अरे ये क्या, इन पैसों के पीछे, इन कौड़ियों के पीछे मैं इतना वैल्यूबल समय उसको वेस्ट करूं, जबकि भगवान मेरे द्वारा ये करा रहा है। ऑटोमेटिक बाबा को ज्ञान रत्नों की वैल्यू होते ही उस स्थूल संपत्ति से वैराग आ गया। उसने अभ्यास नहीं किया कि ये मुझे बाबा की सेवा में लगाना है, ये मेरा नहीं है, मैं ट्रस्टी हूं या मैं विश्व कल्याणकारी हूं, विश्व सेवादारी हूं, नहीं। झट से संबंध के बंधन से मुक्त हुआ, एक दख से संपत्ति के बंधन से मुक्त हुआ। बुद्धि को खींचने वाली ये वस्तु है, संबंध संपत्ति। और बाबा ने इसी से पहले अपने को मुक्त किया। लोग सारा समय किसके पीछे निकाल रहे हैं? संपत्ति के लिए ना। 24 घंटे में से अधिक समय किसके पीछे जाता है? कमाई के लिए ना। कितना घंटा कमाई के लिए निकालते होंगे भाई लोग? जी 10 घंटा। अगर उससे ज्यादा देना पड़े तो भी देने के लिए खुशी से तैयार हैं। और अगर सेवा में 2 घंटे से ज्यादा समय देना पड़े तो हम कहते हैं पहले कहा होता था तो मैं एडजस्ट कर लेता। सारा जीवन लोग उसी में बर्बाद कर देते हैं। और अंत में साथ किया जाता है, भुज में भूकंप हुआ था तो यहां से दादी ने हम लोगों को सेवा के लिए भेजा था। एक व्यक्ति जिसने 6 मंजिल की होटल बनाई थी उसको हम लोग मिले। और 26 जनवरी को भूकंप हुआ था और 28 जनवरी को उसका ओपनिंग होने वाला था। 3-स्टार होटल थी वो, उसका मालिक था ना। वो हंसता था ना वो समझ सकता था, इतना उसको शौक आ गया था, क्योंकि भूकंप के अंदर में उसकी सारी 6 मंजिल की जो होटल थी, हम लोग जब गए तो बताया कि यहाँ इतने बाय इतने की ये होटल बनी हुई थी, सारा मलबा पड़ा हुआ था। आथत दिया, बाबा का संदेश दिया, भरे दिल से, इतने भारी दिल से उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी का सारा समय इस पैसे के पीछे लगाया और इस पैसे के पीछे मैंने कई बुरे काम किए और सोचा था लास्ट में फिर आराम से भगवान को याद करूंगा। लेकिन भगवान ने उसको याद करने से पहले मेरे से सब छीन लिया। भगवान ने छीना, ये बात हम समझते हैं कि उसके कर्मों का परिणाम था। हम जिस संपत्ति के पीछे समय लगा रहे हैं, नौकरी धंधा नहीं करना है वो बाबा की श्रीमत नहीं है, रोज बाबा कहता है धंधा आप जरूर करिए, अच्छे से अच्छा करिए, लेकिन बाबा के समय का भोग दे करके धंधा मत करिए। समझते हैं? आज बच्ची है, हम कहते नहीं क्लास में आना है, क्लास का टाइम है, नहीं आ सकते हैं। परिस्थितियों को आप समझते हो, वो परिस्थिति के वश वो चीज अलग है, लेकिन अपने पुराने संस्कारों के वश जो हम समय को नष्ट करते हैं वो बंधन है। समझो मैं हम सुबह मुरली क्लास कराती हूँ, लेकिन उसी समय पर ऐसा कोई अर्जेंट कार्य आ जाता है सेवा का तो मैं मुरली क्लास में नहीं जाती हूँ, उसका मतलब मैंने कोई मर्यादा का नियम का भंग किया नहीं, वो भंग नहीं है। लेकिन उसका समय है, थोड़ा मुझे सिर दुखा और मैं कहूँ नहीं मैं मुरली नहीं सुनाती हूँ, वो समय का बोझ है। समझते हैं? तो नौकरी व्यवसाय वो आपको बाबा की श्रीमत है, लेकिन साथ में बाबा ने ये भी श्रीमत दी है कि बच्चे तुम इतना समय बाबा की सेवा के लिए निकालो, क्योंकि अब हम सब दुनियावी लोगों के नहीं हैं। हम सब कौन है? इस ईश्वरीय परिवार के। अब तक 63 जन्म हम उनके साथ बहुत प्रेम से रहे, अब जब सारे कल्प में एक ही बार ये परिवार मुझे मिला है, इस परिवार का आनंद और सुख लो। तो जब ये संपत्ति के बंधन से मुक्ति का अनुभव करेंगे तब आत्मा हल्की होगी और उसके बाद जैसे जैसे ऑटोमेटिक है, जब हम इन बंधनों से अपने आप को मुक्त किया तो व्यर्थ है, परचिंतन है, इन सब से आत्मा मुक्त होती जाती है, फिर उन सब का आकर्षण नहीं रहता है, दैहिक आकर्षणों से आत्मा मुक्त हो जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति वस्तु वैभव साधन मुझे खींचता है, इंडिविजुअल हर एक अपने आप को चेक करेगा, तो भी मैं अपनी वृत्ति को जो बनाना चाहता हूं वो उसमें रुकावट डालेगा। बंधन ऊपर से नीचे लाता है, भारी चीज नीचे से ऊपर नहीं जा सकती है। तो अपने आप को इन बंधनों से मुक्त करते हुए जो विधि बाबा ने बताई है, वृत्ति किससे बनती है? वृत्ति हमारे संकल्प से बनती है। जैसा संकल्प वैसा स्वरूप बनता है। तो ये सारे पाठ पढ़ा करके मुझ आत्मा को बंधनों से मुक्त बना करके अब हमारा संकल्प क्या है, मैं एक शुद्ध शक्तिशाली आत्मा हूं। ये आत्मिक स्थिति है, स्मृति नहीं है। स्मृति बार बार लानी पड़ती है और स्थिति स्मृति के आधार से बनी हुई अवस्था है। तो आत्मा के अंदर में कर्म में बार बार अभ्यास करते करते ये ऑटोमेटिक आत्मिक वृत्ति जब बन जाती है, उस वृत्ति से जो वायुमंडल पैदा होता है वो वायुमंडल मुक्ति का होता है, जिससे हम किसी भी बंधन में, मैं तो नहीं बन सकती हूं लेकिन दूसरों को भी हम उन बंधनों से मुक्त करते हैं। एक शब्द जिसको बाबा कई बार कहता है, बच्चे अभी सकाश देने की सेवा करो, होता है ना। तो सकाश क्या है, कई भाई बहन अनुभव सुनाते हैं, मैं अमृत वेले में बैठता हूं तो सकाश देता हूं, कई कहते हैं नुमा शाम के समय बैठता हूं तो सकाश देता हूं। सकाश देते हैं ना आप लोग, देते हैं सकाश। तो सकाश क्या है, स्थिति क्या है, मनसा सेवा है, कब कर सकेंगे, जब हल्के होंगे। सकाश है लाइट और शक्ति का मिश्रण। मैं लाइट हूं, जब मैं लाइट अर्थात आत्मा हूं तब आत्मा की जो मूलभूत शक्तियां हैं वो शक्तियां इमर्ज होती हैं, और इमर्ज होने के बाद उन शक्तियों का प्रभाव जो चारों तरफ फैलता है, जिसको बाबा कहता है वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। संकल्प वाली वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन नहीं होता है, समझे। संकल्प वाली वृत्ति माना मुझे थोड़ा टाइम के लिए हम बैठे, अभी हम योग में चलो अभ्यास करते हैं, आज हमें सकाश देनी है, वो हमारा टेम्पररी अभ्यास है। मैं आत्मा हूं, लाइट हूं, पुंज हूं, मैं आत्मा भी प्रकृति को सकाश दे रहा हूं, हम उसको इमर्ज कर रहे हैं, ये हमारा टेम्पररी पुरुषार्थ है। संकल्प के आधार पर पुरुषार्थ है, उस समय आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और वो हमारा प्लस भी होता है, ऐसा नहीं हमारा जमा नहीं होता है। इतना समय जो हमने श्रेष्ठ समर्थ संकल्प किए उस समर्थ संकल्प का फल हमें अच्छा मिलता है, लेकिन अब जो समय या बाबा हमारे से चाहता है हम संकल्पों के आधार पर पुरुषार्थ को सीमित न रखें, संकल्पों को स्वरूप दे करके उस स्वरूप स्थिति से हम सेवा करें। जो पहला अभ्यास मैं आत्मा का लिख लिख करके पक्का किया, मैं आत्मा हूं देख देख करके पक्का किया, मैं आत्मा हूं कर्म में बार बार उसकी स्मृति लाते हुए पक्का किया, अब हमारी लास्ट और फाइनल स्टेज वो संकल्पों की नहीं है, स्वरूप की है। और जब आप बैठें तब बैठते के साथ अपने उस स्वरूप को देखें, महसूस करें, मैं बिल्कुल लाइट, ये पुंज हूं, और उस पुंज के साथ में ज्ञान गुण शक्तियां इमर्ज हों, और ऐसे हम इस देह के भान को भूले हुए हों, मैं देह नहीं हूं आत्मा हूं नहीं, ये हूं, और जैसे ये हूं इस स्थिति में आप बैठेंगे आप खुद महसूस करेंगे, जैसे ये शक्तिशाली किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, जो मम्मा के लिए सुनते हैं कि मम्मा जब योग में बैठती थी तो ऐसे महसूस होता था जैसे दोनों आंख से बल्ब का प्रकाश जा रहा है। इस स्टेज तक पहुंचना है, लेकिन जो हमारा वर्तमान पुरुषार्थ है इस पुरुषार्थ से नहीं पहुंच सकेंगे। समझते हैं कि जो अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं इस पुरुषार्थ से हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे नहीं पहुंच सकते हैं, हमारा रियलाइजेशन है। जब नहीं पहुंच सकते हैं, अच्छा पहुंचना है, पहुंचना है, और पहुंचना है तो आपको ये 20 नाखून का जोर लगाकर पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। और जो 20 नाखून का जोर लगाकर पुरुषार्थ करेगा वो कभी भी अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति को कारण नहीं बनाएगा। इस कारण से ये नहीं होता है। आज हमारे संस्कारों में जो परिवर्तन नहीं आ रहा है उसका एक कारण ये भी है कि हम संस्कारों को अभी भी कमजोरी का सपोर्ट दे रहे हैं। सपोर्ट कैसे देते हैं? बहन जी प्रवृत्ति में रहते हैं तो ये सब करना तो पड़ता है ना, गुस्सा तो आ जाता है ना, अमृत वेला मिस हो जाता है ना, कि आपने कमजोरी को सपोर्ट दिया, क्योंकि हमने परिस्थिति को विशेष समझा। इसके कारण से ये होता है, ये तो होगा ना। अगर मुझे सचमुच बाबा की ये लास्ट सीजन की जो लास्ट मुरली थी उसमें भी बाबा ने हम सबको ये होमवर्क दिया है, वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करो। पहले हर एक अपना टारगेट अपना गोल फिक्स करे। मेरे आगे मेरी ये दिनचर्या है, मेरे आगे समाज के ये बंधन है, मेरे आगे संबंध के ये बंधन है, संपत्ति के ये बंधन है, इन सब के बीच से रास्ता निकालना मेरा काम है, मुझे निकालना है। जहां चाहा है राह मिलेगी, बाबा की मदद मिलेगी। लेकिन फिर लेकिन कहती हूं, अब अपने आप को प्रवृत्ति का कह करके इजी नहीं छोड़ो। हम एक एक बाबा के नूरे रतन हैं, एक एक प्रवृत्ति वालों से बाबा वो सेवा लेना चाहता है, क्योंकि बाबा ने कहा ये मेरे वो बच्चे हैं जिसको दुनिया जिसके आगे झुकती है उसको झुकाने वाले हैं। सन्यासियों को झुकाने वाला कौन? बाबा के प्रवृत्ति वाले बच्चे। ये सामर्थ्य ये शक्ति आपके अंदर है, तो उन विशेषताओं को इमर्ज करते हुए इस पुरुषार्थ के अभ्यास को वृत्ति से वायुमंडल को मुझे बदलना है। ये आज से इस बच्ची से दृढ़ संकल्प है, और उसकी जो विधि, एक तो अमृत वेला कभी मिस नहीं करेंगे, दूसरी बात अमृत वेला शक्तिशाली करेंगे। और तीसरा जो बाबा के महावाक्य मुरली है, मुरली को गोपियों के रस जैसे सुनेंगे और धारण करेंगे। गोपियां कैसे सुनती थी, कैसे सुनती थी? सुध बुध खोई हुई हो जाती थी ना, के लिए तो नहीं कहती हूँ, लेकिन बहुत जगह जाती हूँ तब ये देखने में आता है। शांतिवन में भी जब सुबह अमृत वेले योग में बैठते हैं, आप देखो सामने से सभा को अमृत वेले में, मेजोरिटी की आंखें बंद होती है, मुरली के समय पर भी बंद हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ एक बात सबको, मुरली आप कैसे सुनो। एक है मुरली में बाबा तीन शब्द कहता है, एक बाबा कहता है बच्चे तुम सब सीताएं हो, सीताएं कहता है ना, सीता की आप हिस्ट्री देखो, सारा जीवन रोया है। पहले राम के साथ वन में जाने के लिए रोया, वन में आने के लिए सोने के मृग के लिए, और उसके बाद रावण ले गया तो दोनों अलग हुए तो रोया, और जब वापस आ गई तो अग्नि में उसको परीक्षा हुई, माना सारा समय सीता ने रोया। तो सीता क्या करती थी, रोती थी। दूसरा बाबा कहता है बच्चे तुम सब पार्वतियां हो, पार्वती क्या करती थी, अमरनाथ कथा सुना रहा था, सामने बैठी थी और फिर सोती थी, और वो कबूतर हूं हूं कर रहा था, भगवान खुश हो रहा था कि ये पार्वती सुन रही। हमें मालूम है मैं पार्वती हूं, अमरनाथ कथा सुना रहा है, लेकिन कथा सुनाते हुए भी न इधर से अंदर जा रही है न इधर से अंदर जा रही है। जो ज्ञान मेरे जीवन में धारण नहीं हुआ तो वो क्या हुआ, पार्वती ने सोया तभी तो अंदर नहीं गया ना। और ऐसे भी पार्वतियां जिस समय मुरली चलती होती है तब अमरनाथ चला रहा है, तो पार्वती बन करके भी मुरली नहीं सुनना। हमें मुरली कैसे सुननी है, गोपियां बन करके। मुरली का गायन ही गोपियों के लिए, कहां भी मुरली बजती थी। कभी किसी गोपी ने ये नहीं कहा कि बहुत दूर कृष्ण मुरली बजा रहा है मैं कैसे जाऊं, कहा। हम कई बार कहते बहन जी सेंटर बहुत दूर है, सुबह नहीं आ सकती हूं। मुरली के दीवाने वो गोपियां थी। हम भी बाबा के महावाक्यों को गोपी बन करके सुने, अर्थात देह भान की शुद्ध बुद्ध भूले हुए हो, और उस स्थिति में जो आप मुरली सुनेंगे वो मुरली आपके जीवन में धारण होगी। सुन लिया, सार लिख लिया, वरदान लिख लिया, भगवान इतने सारे साधन दे दिए हैं। कई भाई बहने सार लिखा पहले, फिर प्रश्न उत्तर लिख लिया, डायरी बंद की, लास्ट में सार आया, वरदान आया, स्लोगन आया, लिख लिया। हम बाबा के इन महावाक्यों को सुनने के पश्चात दिन में बार बार मनन चिंतन करते हुए अपने में धारण करें। जब ये तीनों धारणाएं हमारी पक्की होंगी, क्योंकि मुरली भी क्या सिखाती है, आत्मिक भाव, व्यवहार, शुद्धि, और अमृत वेला भी क्या करता है, शक्ति देता, तब फिर अभ्यास करते करते हम अपनी वृत्ति को इतना ऊंचा बना सकते हैं। प्रभाग के द्वारा जो सेवाएं चल रही हैं, उसमें इस वृत्ति के वाइब्रेशंस के जो पौधों पर ये वाइब्रेशंस देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो प्रकृति को परिवर्तन करने का कार्य ये सेवा बाबा ने हम बच्चों को दी है। तो हम जिस विशेष सेवा के निमित्त हैं, तो अपनी वृत्ति को इतना ऊंचा बनाते हुए हर रोज इस अभ्यास को पक्का करेंगे, और इसी हमारे वृत्ति से वायुमंडल चेंज होगा। लास्ट में एक बात और, इसी वृत्ति के वायुमंडल पर आपको याद होगा थोड़ा दिन पहले अव्यक्त बाबा ने एक मुरली के अंदर में एक शब्द कहा था कि बच्चे भ्रष्टाचार को आप बच्चे खत्म करेंगे। एक ही बार बाबा ने ये कहा है, अव्यक्त बाबा ने कहा था। उसको जो खत्म करना है वो कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो जानता है मैं भ्रष्टाचारी हूं, ताकत नहीं है। हमारी ये पावरफुल वृत्ति उनको वो वाइब्रेशंस देगी, जिस वाइब्रेशन से उनमें रियलाइजेशन आएगी, उनमें खत्म करने की, उसको छोड़ने की भावना आएगी। इतनी ऊंची सेवा हमें अपनी इस वृत्ति से करनी। और जितना हमारा शांत और शक्तिशाली ये वाइब्रेशंस हैं, इस वायुमंडल को चेंज करेंगे। वायुमंडल से पहले हम अपने परिवार, अपने साथियों के साथ में ऐसे अच्छे प्रयोग करें जिससे भावनात्मक हमारी एकता बढ़े और इस ईश्वरीय परिवार की प्रत्यक्षता के, बाबा की प्रत्यक्षता के हम सब निमित्त बने। ओम शांति।
ओम शांति। मैं समझती हूँ बहुत अच्छा लगा, अच्छा नहीं पर बहुत अच्छा। एक हाथ की ताली से अभिवादन करें सर। मैंने बहुत सरल लिपि से बताया है कि किस किस प्रकार से हमारी वृत्ति बनती है और उस वृत्ति का वायुमंडल पर भी प्रभाव पड़ता है। मैंने तो लास्ट दो ही पॉइंट सुने क्योंकि कोई ना कोई फोन आ रहे थे तो उठना पड़ता था, लेकिन जो दो तीन पॉइंट लास्ट सुने उससे भी मुझे अंदाज आया कि बहुत अच्छी तरह से आप सभी को ये विषय क्लियर हुआ होगा। हुआ क्लियर सबको? बहुत अच्छा। अभी सुरेंद्र भाई बात कर रहे थे सरलाबेन, सब हमें ही कह रहे हैं मैं आपको क्यों कहते कि सरलाबेन को बोलो दोबारा क्लास कराने आवे तो जरूर हमारा निमंत्रण स्वीकार करेंगे है? और हम सरला बहन का दिल से और स्नेह से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे इस छोटे से समय में हमारे फोन से ही आपने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे बीच पहुंचे और अच्छी तरह लाभान्वित हुए हम सभी।
हम आपको क्लास कराते हैं ऐसा नहीं है, इसमें इस आत्मा की प्रगति है। इसलिए हमेशा बच्चियों में जहां भी बच्ची है क्लासेस, हम अपने सेंटर पर भी बहुत रुचि से, क्योंकि और तो कोई साधन, सारा समय सेवाएं करते रहो, उन सेवाओं के बीच में भी दादियों से एक पक्की धारणा की है कि साधना को कब नहीं भूलना। सेवा हम चाहे जितनी करें, लेकिन सेवा मैं छोड़ दूंगी तो दूसरा कर सकता है, साधना मुझे कोई करके नहीं दे सकता है। दोनों का बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ते रहें, ऐसा एक श्रेष्ठ लक्ष्य रखा है। और आप सबको भी कहती हूँ, आप सब भी इसी लक्ष्य से आगे बढ़ेंगे तो बाबा बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आपको कराएंगे, बहुत अच्छे अनुभव कराएंगे। ये ऐसा वरदानी समय है जिसमें हम नहीं सोचते हैं उससे भी ज्यादा बाबा हमें दे रहा है, लेकिन सिर्फ सिर्फ लेना आना चाहिए। Thank you.